भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का योग रहस्य पे। भाई बहनों, इस योग रहस्य कार्यक्रम के माध्यम से हम योग की अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचाने का मंगलमय कार्य करने का प्रयास करते हैं। योग आपको ले जाता है आपकी सत्य पहचान तक। योग आपको खेलना सिखाता है धरती से आसमान तक। योग आपको ले जाता है प्रकृति से भगवान तक। तो ऐसे पावन जो योग के रहस्यों को जानने के लिए हम अपने मेहमानों को यहां बुलाते हैं, आज मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी का, हमारे डॉक्टर भ्राता सतीश जी का, और साथ ही साथ हमारे दिनेश भाई जी का जो कि दिल्ली से पधारे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं बात करते हुए शुरू करना चाहूंगा हमारी उषा दीदी जी से कि ऐसे कहा जाता है कि जो योग करता है, जो योगी होता है, उसके स्थूल शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसकी जो आभा है, उसका ऑरा है, वो बहुत सुंदर हो जाता है। क्या ये सत्य है?
ऐसा है कि ये तो साइंस ने भी फाइंडिंग किया है कि हर इंसान के आसपास एक ओरा होता है
जी।
किसी के आसपास नेगेटिव होता है, डार्क कलर के ओरा होता है, किसी के आसपास लाइट कलर के ओरास होता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन माना जब हम अपने अंदर सकारात्मक चिंतन करते हैं तो हमारे विचारों के ही प्रकंपन जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस हमारे ओरा को पॉजिटिव बनाने लगता है
जी।
और जब पॉजिटिव बनता है तो माना लाइट कलर्स, तो डार्क कलर से लाइट कलर की ओर जाता है। और इस तरह से वो हमारे शरीर को भी, जो फिजिकल बॉडी है, उसको भी किसी न किसी तरह से हील करता है। आज के युग के अंदर मेडिटेशन की आवश्यकता इसीलिए है कि एक व्यक्ति जब काम पर जाता है तो चारों ओर नेगेटिव एनवायरनमेंट ज्यादा है
जी।
और इसीलिए जैसे ही वो वहां जाता है तो नेचुरल है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट का ओरा जो है उसको प्रभावित करने लगता है और उसकी इनर एनर्जी भी ड्रेन होने लगती है।
तो आपका कहने का मतलब, अगर हमारा ऑरा जितना शक्तिशाली है
जी,
पावरफुल है, तो वो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आने के रोकता भी है।
बिल्कुल, वो शील्ड बन जाता है और शील्ड होने कारण वो हमें प्रभावित नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे पॉजिटिव ओरा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। जैसे एक उदाहरण अगर मैं दूं कि कई बार कई लोग क्या कहते हैं, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है।
बहुतों को ऐसा होता है।
नॉर्मली लोगों को ऐसा होता है। अब सोचने की बात है, थोड़ा सा अगर इस बात को एनालिसिस करें हम कि वो सामने वाला व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है। झूठ इसलिए बोलता है किसी न किसी बात का डर, और वो डर उसको झूठ बुलवा रहा है, राइट? तो डर ये नेगेटिविटी है, डर पॉजिटिव तो है नहीं
जी।
झूठ बोलना ये भी नेगेटिव है। लेकिन जब हम जाते हैं, माना भले मेडिटेशन किया हो या अपने आप को चार्ज करके जाते हैं, लेकिन जैसे उसने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया
जी।
नेचुरल है, उसके प्रभाव में हम आ गए, इसीलिए मुझे गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सा आना ये भी तो नेगेटिविटी है। तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन जो आया, ये नेगेटिव ओरा के प्रभाव में हम आ गए। माना हम कमजोर थे, इतना चार्जिंग मैंने किया नहीं था, तभी मुझे गुस्सा आ गया। अब मेडिटेशन करने से होता क्या है, ये नहीं कि वो व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देगा, नहीं, इतनी पावर उसमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने अंदर पॉजिटिव ओरा को विकसित किया, तो जब मैं उस वातावरण में जाती हूं तो वो व्यक्ति सच तो नहीं बोलेगा लेकिन झूठ बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं आएंगी, इतना हमारी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव रहेगा।
लेकिन मैं एक बात ही जानना चाहूंगा, आपने भी कहा कि हम अपनी आभा वो और आप बनाते हैं, यू नो जितना बनाया किसी ने अच्छा, ये हम खास उसको बैठ के बनाते हैं या हमारे अंदर योग से कुछ ऐसा अपने आप रूपांतर आता है कि वो जो हमारी आभा है वो शक्तिशाली हो जाती है?
योग जब करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के वो वाइब्रेशंस
वो ऑटोमेटिक उससे निर्माण ऑटोमेटिकली
उस ओरा को क्रिएट करता है।
जी, जी जी।
तो इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। अब वो सच बोलने तो नहीं लगेगा लेकिन जब हम गए तो वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा,
मतलब जो पॉजिटिव शक्ति है वो उस पर प्रभाव डालेगा।
तो हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसके बाद जैसे ही हम वहां से निकलेंगे लेकिन वो प्रभाव उसके दिमाग पर रहने कारण वो एक अंतर्द्वंद में चलेगा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे सच बोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था। और आधा घंटा उसको लगता है हिम्मत इकट्ठी करने में और फिर आधा घंटे के बाद वो हमारी कैबिन में आकर कहेगा देखो उस समय मेरे को अंदर डर था इसलिए मैंने बताया नहीं लेकिन बात कुछ ऐसी थी,
सच्चाई ये है,
ऐसे आया हुआ। और उस समय हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं,
क्योंकि आप तो पहले से सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं।
जी, तो मेडिटेशन करने से ये फायदा होता है।
डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आभा के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है और आपका निजी अनुभव इसके बारे में क्या कहता है?
कि मेडिकल साइंस की जहां तक बात है, उन्होंने अभी रशिया के और ईस्ट जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। उन्होंने पहले एक मशीन बनाई थी सिर्फ जो लाइफ फोर्स एनर्जी को नापती थी।
जी,
फिर उन्होंने क्या किया, ईईजी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ईईजी और लाइफ फोर्स एनर्जी और साथ में उन्होंने क्लियन फोटोग्राफी, क्लियन फोटोग्राफी का एक नया प्रारूप निकाला है अभी, इंफ्रारेड के बजाय उन्होंने दूसरे रूप में लिया है और सटल लेवल पे गए हैं, उस पर रिसर्च चल रही है। तो तीनों को उन्होंने इंटेग्रेट कर दिया डिजिटल मॉडल, पहले डिजिटल नहीं था, पहले मैनुअल टाइप का था।
हाँ जी,
हालांकि अभी वो रिसर्च टूल है, पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें मेडिटेशन का असर करके देखा। उनमें पैसे तो थॉट्स का पहले असर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स का असर करके देखा, खान पान का असर भी देखा है उन्होंने, वातावरण का भी असर देखा है। मतलब सपोज आप एक चौराहे पे चले जाइए, एक किसी मस्जिद में चले जाइए या चर्च में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, उसका असर भी देखा है।
तो हर वातावरण का भी प्रभाव,
भोजन का भी असर देखा है। नॉन वेज भोजन खाइए, ब्रेड खाइए, पराठा खाइए या पिज्जा खाइए या फ्रूट्स खाइए या स्प्राउट्स खाइए, उसका भी अलग असर होता है।
क्या बात है।
तो उसका बड़ा अच्छा, मतलब उस पर एक स्टडी रिसर्च जैसे वो कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग भी इस तरह का हमने कुछ, हालांकि हमारे पास इस तरह की मशीन नहीं थी, हमारे पास ईजी था और कुछ और चीजें थी जो हमने कोरिलेट करने की कोशिश की है अपनी रिसर्च में। तो हमने पाया है कि जब हम ये जो जैसे हम बात करते हैं ना अपने कॉन्सेप्ट में भी, थ्री डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, तो हम यही बात करते हैं कि आत्मा के पास सात स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, ज्ञान माना सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। ये सात एनर्जीज हैं और आत्मा मन के माध्यम से बॉडी को नरिश करती है, बॉडी के 80,000 अरब कोशिकाओं को नरिश कर रही है। किससे? मन माना क्या? मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज।
जी,
तो थॉट्स के थ्रू जाएगी एनर्जी। सपोज मुझे आत्मा को, हार्ट को प्यार देना है, लव देना, लव की फीलिंग देनी, लव की एनर्जी देनी है, तो कैसे देगी? वो पॉजिटिव, वो लवफुल थॉट्स के थ्रू देगी ना।
बिल्कुल,
लवफुल भावनाओं के थ्रू देगी ना, लवफुल एटीट्यूड के थ्रू देगी ना, तो मेरे हार्ट को एनर्जी पहुंचेगी, राइट? तो आप पर मन के माध्यम से देगी। तो मेरी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मेरी टीम नेगेटिव होगी तो क्या होगा? भले मैं कितना मर्जी मेडिटेशन करूं, कितनी मर्जी मैं योग सुबह 3 बजे उठ जाऊं, 2 बजे उठ जाऊं, कितने बजे मेडिटेशन करूं, कि तो मेरे मन में कुछ ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव मेमोरीज हैं व्यक्तियों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, कुछ बिलीफ सिस्टम मेरे ऐसे हैं कि वो एनर्जी यहीं ब्लॉक हो जाती है।
ओके,
किसी विशेष व्यक्ति को देख के मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, तो क्या होगा? वो एनर्जी में ब्लॉक हो जाएगी। जैसे आप बात कर रहे थे अभी, किसी विशेष व्यक्ति को देख के, वो व्यक्ति वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योगी है, कि तो उसके किसी के साथ अटैचमेंट है तो उस व्यक्ति के सामने उसकी योग पावर खत्म हो जाती है।
बिल्कुल
राइट, क्योंकि उसके ऑरा में छेक हो जाता है, उसकी उसकी तीर उसको जाके सीधा लगता है, वो और उसका इफेक्टिव है, किंतु तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, उसके समय भी।
तो जो सातों शक्तियां आपने बताई हैं वो अपना अपना ऑरा बनाती हैं या एक ही
ऑरा? बेसिकली कुछ और नहीं है
जी,
ऑरा ये सातों एनर्जी है।
ओके,
जितना आप मेडिटेशन करो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के आप एनर्जी अपने अंदर भरते जाओ, टीम को पॉजिटिव बनाओ, टीम अपनी पॉजिटिव रखो, मन में एक भी नेगेटिव विचार मत आने दो, नेगेटिव भावना मत आने दो, नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव स्मृति को जागृत मत होने दो
जी।
उसका एक ही तरीका है, जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं उसके अंदर रहो, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें तो हम वो हमारे अंदर नेगेटिव टीम नहीं आएगी। परमात्मा के जो महावाक्य उनका मनन चिंतन करते हैं तो उससे हमारी टीम पॉजिटिव होती जाती है, और फिर हम उसको मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। और प्लस शरीर के अंदर भी जरूरी है मेरा आभा मंडल बने, क्योंकि एनर्जी मेरी आत्मा से शरीर में आ गई
जी,
अब शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? अगर मेरा भोजन गलत है, मेरा भोजन शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए ताकि उस एनर्जी को बाहर निकलने की जगह दे।
ओके,
अगर मेरा भोजन रासिक भोजन है, पराठा पकौड़ा समोसा गरिष्ठ भोजन है, तामसिक भोजन है, उत्तेजना पैदा करने वाला, कैफीन है बहुत, कोल्ड ड्रिंक्स हैं बहुत सारे, चाय कॉफी बहुत सारी है, लहसुन प्याज है जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उत्तेजना बढ़ा देता है, नॉनवेज है उत्तेजना बढ़ा देता है, तो एनर्जी मैं कितना मर्जी योग करूं किंतु मेरी एनर्जी बॉडी के बाहर नहीं आएगी,
तो वो भी हमारे
बॉडी
प्रभावित करता है, आभा मंडल को कमजोर करता है।
तो शुद्ध सात्विक भोजन हो, मेरी सैर भी शुद्ध सात्विक हो, बातें करते हुए सैर ना हो, नींद मेरी अच्छी गहरी नींद हो, नींद कच्ची ना हो
जी,
क्योंकि वो उसके सेल्स में टॉक्सिन जमा होंगे तो भी एनर्जी बाहर नहीं आएगी। तो तीन चीजें बहुत रिक्वायर्ड है, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर और शुद्ध सात्विक नींद।
ओके,
मतलब सातों गुणों का अभ्यास करते करते सोना है आपको, वो शुद्ध सात्विक नींद है। सपनों की क्वालिटी उसमें बहुत लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप जब ऐसी नींद लेंगे तो वो आभा मंडल आपका जो एनर्जी है वो बाहर आके इकट्ठी होती है,
एक सुंदर आभा मंडल सातों मिलके बहुत आपका
हर सेल में एनर्जी होगी, ये शांति प्यार खुशी की एनर्जी, और हमारे आसपास भी इकट्ठी होगी
बिल्कुल।
और ये एनर्जी जैसे उषा दीदी ने बताया कि एनर्जी शील्ड का काम करती है, जितना हम अभ्यास करते जाएं यही हमारी कमाई है, यही हमारी हीलिंग एनर्जी है, कि ये एनर्जी जो हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती है वो 6 इंच भी हो सकती है, 8 इंच भी, 1 फुट, 2 फुट, 10 फुट, 50 फुट, 100 फुट तक भी कर सकते हैं।
और जैसे आपने कहा कि ऐसा बहुत अच्छे यंत्र आ रहे हैं,
जितना आप बढ़ा सकते हो उस एनर्जी को, जैसे आपने देखा होगा किसी योगी के पास, जैसे हमारे सेंटर में आ जाइए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आ जाइए, शांतिवन में आ जाइए, मधुबन माउंट आबू चले जाइए, वहां जो टोटल आभा मंडल है, टोटल जो वायुमंडल है, आभा मंडल को आप वायुमंडल भी कह सकते हैं
जी,
तो वो जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल क्या है? वो बेसिकली कुछ और नहीं है, वहां रहने वाले लोगों का आभा मंडल कन्फ्यूज हो गया, मेरा आभा मंडल यहां तक है, आपका यहां तक है, बहन जी का यहां तक है, आपका यहां तक है, ये इस एरिया में क्या हो गया? ये वायुमंडल हो गया। इस वायुमंडल में जो आ जाएगा उसको बहुत अच्छी शांति की अनुभूति होगी,
बिल्कुल
प्यार खुशी की अनुभूति होगी। तो ये जो है रियल आभा मंडल जिसपे इस पे अभी काम चल रहा है, हालांकि इसके लिए बहुत मुश्किल है, मेटाफिजिकल काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो इस पे कार्य चल रहा है कि हम इसको और फर्दर डिफाइन कर पाएंगे कि कैसे हम ये आभा मंडल को हम बढ़ाएं, वायुमंडल को क्रिएट करें। जैसे आज शांतिवन का वातावरण देखिए, ब्रह्मा कुमारीज कॉम्प्लेक्स का
जी,
आदमी आता है उसके बाहर के विचार अलग टाइप के,
अंदर आते ही
देखा क्रॉस करते ही, गेट क्रॉस करते विचार बदल जाते। तो क्या है वो शांतिवन में रहने वाले, दीवारों से नहीं निकल रहा है वो शांतिवन में रहने वाले लोगों की योग तपस्या का आभा मंडल है, वो आपस में कन्फ्यूज होकर वायुमंडल बन गया। तो ये जो है हमारी, इसको हम चाहे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और ये मैं तो कहता हूं इतना पावरफुल चीज है, ये हमें नेचुरल जो क्लाइमेटीज आने वाली उससे भी हमारी रक्षा करता है
जी।
मान लीजिए अर्थक्वेक आया और मेरा आभा मंडल वहां तक है ना, तो वहां तक अर्थक्वेक आके वहां रुक जाएगा,
ये तो बहुत गहरी बात कही आप,
तो वहां तक रुक जाएगा और वहां से वो धरती अगर छत गिर भी रही है, छत जो है वो टेढ़ी वहां के टेढ़ी होकर झुक जाएगी, मेरे को चोट नहीं पहुंचेगी।
क्या बात है, ये तो बहुत शील्ड बताया आपने, शील्ड किसी की बददुआ हर तरह से सहयोगी बनती है,
किसी की बददुआएं हैं, किसी का गलत प्रभाव है, किसी की कोई और भी बात है, इवन मैं तो कहता हूं बैक्टीरिया वायरस, इस पर रिसर्च हो रही है कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं अगर मेरी आभा मंडल स्ट्रांग है तो, राइट। ये इस पर हम एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसे भी रिसर्च हो रही है, हम आप इतना इंटेंस इसको बढ़ाएं कि वो एंटीबायोटिक वो कीटाणु अपने आप ही,
ये तो बहुत अच्छा बहुत सहज तरीका है, और
इससे
धन की शक्ति भी बचेगी, वक्त भी बचेगा, और जो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं डिजीजेस की वजह से,
आपने देखा योगी लोग जो होते हैं ना, योगी जो होते हैं जंगल में रहते हैं, वो कौन सा पानी आरो मिनरल वाटर पीते हैं
जी।
वो यही नदी तालाब का पानी पी के भी हेल्दी रहते हैं ना? और कौन से बेचारे धो के खाना खाते हैं, कौन सा वो लगाते हैं हाथों पे
जी,
क्या बोलते हैं उसको,
सैनिटाइजर,
सैनिटाइजर कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं।
और ये जो आपने कहा ऐसे यंत्र आ रहे हैं फिर तो बहुत सहज हो जाएगा।
हमारे सिस्टम्स है ना उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाए, साइंस कोशिश कर
रही है
जो आज हम जो बात कर रहे हैं उसको डिफाइन कर सकें
जी।
उस पर कोशिश बहुत चल रही है।
और हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कहा करते थे कि जो बहुत अच्छे योगी हैं आप उनके पास कुछ मिनट जाके जरूर बैठो उनकी आभा में, सिर्फ बैठने से ही आपके ऊपर उनका जो है शुद्ध प्रभाव।
रशिया जो है ना, रशिया कंट्री ऐसी, रशिया और ईस्ट जर्मनी, इसमें काफी काम चल रहा है।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जल्दी ये कार्य पूर्ण हो, हम और जो योग के अच्छे रहस्यों को आप साइंस के साधनों से भी उसे स्पष्ट कर सकें, बड़ा सहज हो जाएगा। मैं दिनेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, हम आभा की बात कर रहे हैं, योगा के अंदर किस तरह से आभा को मजबूत बनाने के लिए कुछ और क्रियाएं भी हैं, कुछ और तरीके भी हैं?
हाँ, योग के अंदर जैसा कि देखा जाता है, महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कि आसन और प्राणायाम करने के बाद जो शारीरिक शुद्धि क्रियाएं हैं उनको करने के बाद उन्होंने जो अगला स्टेप बताया है वो प्रत्याहार के बारे में बताया है। प्रत्याहार है कि जो भी हमारी कर्मेंद्रियों को आहार चाहिए, जो भी तामसिक आहार चाहिए उसके प्रति उससे उलट आपने आहार देना है। जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नयन जो भोगे रूप को और गंध को घ्राण, कि हमारी नयनों को एक आदत है कि वो रूप को भोगना चाहती है, और गंध के लिए जो हमारी नासिका है वो अच्छी गंध को भोगना चाहती है। फिर वो कहते हैं कि त्वचा भोगे स्पर्श को बाढ़े अधिक विकार, कि जो त्वचा है हमारी वो स्पर्श को भोगना चाहती है, और जो हमारे कान हैं वो अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, और जो हमारी जिव्या है सटरस भोगे जीव ही शब्द ही भोगे कान, कि हमारी जो जीव है वो सारे के सारे रसों को भोगना चाहती है, और जो हमारे कान हैं उनकी श्रवण कर्मेंद्रियां जो है हमारी इतनी प्रबल है कि वो कुछ भी जो वेस्ट थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन चीजों को बहुत ज्यादा सुनना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि अगर इन चीजों से हम अपना विपरीत चलते हैं, कि अगर नैनों को हम अच्छी चीजें देखने के लिए देते हैं, परमात्मा का ध्यान करने के लिए देते हैं, मेडिटेशन करने के लिए देते हैं, और जो भी हमारी नेगेटिव कर्मेंद्रियां मांग रही हैं उससे हम उनका विरोध करते हैं, उसको रोक के रखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस योगी का आभा मंडल धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू
मतलब
हो जाता
जितना सात्विक दिया
जितना
जाए, निर्मल दिया जाए
उतना उनका आभा मंडल अपने आप बढ़ता था। तो यही उन्होंने जो अभ्यास दिया था, लेकिन कालांतर में अभ्यास की तरफ ध्यान कम होता गया, सिर्फ जो शारीरिक
एक्सरसाइज की ओर चला गया,
वहां ध्यान ज्यादा होता है।
तो योग की गहराई जितनी समझी जाए उतनी कम है, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज ये सब जान रहे हैं। कैसे आपने अपने कर्म इंद्रियों को सिर्फ सात्विक शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना है, जो आंखें देखती हैं वो शुद्ध देखें, सात्विक देखें, निर्मल देखें, जो बोल बोले जाएं वो सात्विक हो, निर्मल हो, जो श्रवण किया जाए वो भी बहुत निर्मल हो, अच्छा हो, तो आपके आभा मंडल को भी उससे मजबूती मिलेगी, जो आहार आप साथ भी लेंगे उससे आपके आभा मंडल को मजबूती मिलेगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब एक और योगी का क्लिप देखते हैं, जानते हैं कुछ और योग के बारे में।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू सहित सारी देश विदेश की सभी सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे। मैं सर्वप्रथम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के जो पुरुषार्थ हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विचार को विश्व व्यापक बनाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी की बात है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार विमर्श करने के बाद में कंसीडर करके इन्होंने डिक्लेयर किया। आज सारे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे। साथ साथ में मैं और एक बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज योग को एक स्कूल में, कॉलेजों में व विश्वविद्यालय में योगा डिपार्टमेंट भी खोल रहे हैं, क्योंकि योग से मन परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन है, विचार परिवर्तन होते हैं, संबंध में शुद्धिकरण आ सकता है और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि आज कोई न कोई परिस्थिति के वश होकर के संबंधों में तनाव आने के कारण व व्यवहार में कोई न कोई ऊपर नीचे होने के कारण व्यापार और बिजनेस व संबंधों में कोई न कोई बातों के कारण टेंशन आता है। इस टेंशन से मुक्त होने के लिए योग एक बहुत बड़ी शक्तिशाली माध्यम है। इस शक्तिशाली माध्यम को जीवन में अभ्यास के क्रम में डालेंगे व साधना के रूप में हम यूज करेंगे और इसको ये विज्ञान के रूप में स्टडी करेंगे और इसका हैबिट के रूप में इन्होंने नित्य जीवन में जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन एक दिव्य जीवन बनेगा, शुद्ध जीवन बनेगा, पवित्र जीवन बनेगा, शांतिमय जीवन बनेगा, सुखमय जीवन बनेगा। साथ साथ में केवल व्यक्ति की परिवर्तन की बात ही नहीं है, योग एक ऐसे विज्ञान है जिसमें परिसर को शुद्धिकरण कर सकता है, वायुमंडल को शुद्धिकरण कर सकता है, दूसरों के संबंधों को सुधार कर सकते हैं, प्रकृति को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। योग में ऐसी शक्ति है क्योंकि इसका सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन की पावर भी समावेश है। गॉड रियलाइजेशन के माध्यम से जैसे सोल एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, सोल एनर्जी को बढ़ाने के कारण से आत्मा शक्तिशाली हो जाता है, शक्तिशाली के कारण परिस्थिति प्रकृति की कितनी विपरीत स्थिति हो उसमें भी एक बैलेंसिंग करने के लिए, ब्लिसफुल स्टेट को मेंटेन करने के लिए, सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए शक्ति मिलता है। इसके लिए योग एक विज्ञान भी है और इस आध्यात्मिक विज्ञान हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस हम कहना चाहता हूँ, और इस स्पिरिचुअल साइंस को वास्तविक एक हर एक व्यक्ति का नेचर में समावेश है, परंतु हम इस नेचर को एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं गलती किया व हमने उसको सही जाना नहीं। परंतु इस समय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से पूर्व जानकारी लेकर के इसको शिक्षा को विश्व व्यापक बनाया और इसको राजयोग के माध्यम द्वारा हम लोगों ने सिखाया, क्योंकि राजयोग ऐसी योग है जिसको मनुष्य को राजा बना सकते हैं, अर्थात अथॉरिटी बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं और संपन्नता का ओर ले जा सकते हैं, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और मन जो सोचना चाहे वही सोच सकते हैं, जो अशुद्ध संकल्प विकल्प उनसे मुक्त हो सकता है, इसके लिए इसको राजा कह सकते हैं। उतना ही इस विद्या से राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के अंदर क्षमा दया प्रेम शील आदि गुण अपने आप में विकसित होते हैं। जिनके पास दया है क्षमा है प्रेम है वो अपने आप सामाजिक सेवा में विश्व सेवा में मनुष्य के अनेक परिस्थितियों में उनको सहयोग देने के लिए संस्कार समावेश हो जाता है। इसके लिए उनके अंदर सहयोग भाव सद्भावना के भाव समा भाव क्षमा भाव सहज रीति से विकसित हो जाते हैं, क्योंकि आज के ये गुणों के अभाव होने के कारण मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं उद्वेगित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष और जलस आदि के नकारात्मक विचार उनमें विकसित हो जाता है। उस संस्कार के कारण वो खुद परेशान दूसरों को भी परेशान और वायुमंडल को भी खराब, इसी कारण से कई अनेक प्रकार की टेंशन होता है। सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सामाजिक टेंशन भी हो जाता है, विकृतियां पैदा हो जाते हैं और टेररिज्म आदि पैदा होता है, हिंसा का प्रवृत्ति में बढ़ावा हो जाता है और ये नकारात्मक चिंतन मनुष्य को नुकसान करता है। इसके लिए राजयोग सकारात्मक चिंतन की विधि से जोड़ देते हैं और साथ साथ में इसमें हर एक अपने कर्मों में कुशलता आती है, प्रशासन में श्रेष्ठता और दिव्यता और समरसता आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज प्रशासन में समरसता नहीं है और बैलेंसिंग नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है और कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, उसी कारण से तो समाज में उतराव चढ़ाव आ जाता है। इसके लिए राजयोग का अभ्यास से प्रशासन में एक न्याययुक्त सामाजिक न्याय को प्रक्रिया को आगे रखते हुए सर्व के साथ सबका कल्याण जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है उसको शक्ति बढ़ता है, उसको एक विधि देता है, उसको एक सकारात्मक बल मिल जाता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने करीब 8,500 केंद्र उपकेंद्र व अन्य सेवा स्थानों के माध्यम द्वारा लगभग 10,00,000 भाई बहनों ने इसको नित्य प्रति अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उसी कारण से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विकास की गति भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।
तो देखा आपने आज के इस एपिसोड में योग को कैसे आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने आभा मंडल को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये केवल आप तक ही सीमित नहीं रहता लेकिन आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है और जो उस आभा मंडल में आता है उसको भी इसका लाभ होता है। तो अपने स्वास्थ्य को, अपने योग को और बेहतर बनाते जाइए सात्विक विचारों से, शुभ विचारों से, सात्विक आहार से, शुद्ध आहार से। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आज के हमारे आदरणीय मेहमानों का, हमारे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आपने पधारकर हमें बहुत अच्छा आभा मंडल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताया कि कैसे अब हमें और पता लगने लग जाएगा यंत्रों के द्वारा कि हम किस अवस्था में हैं और हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। और भ्राता हमारे दिनेश शर्मा जी जो दिल्ली से पधारे हैं, किस तरह से हम अपने अन्न का प्रभाव भी अपने तन के ऊपर, मन का प्रभाव भी अपने तन के ऊपर देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। योग से बनाए जीवन को स्वस्थ, पावन और निर्मल। योग कहता है ये जीवन की धारा बहती चली जा रही है, करना है जो भी कर लो ये कहती चली जा रही है। यदि आप योग को आदत बनाओगे तो ये आपको बना के रखेगी, अज्ञान के सोए हुए जगत में आपको जगा के रखेगी। हो आपकी चेतनता और बेहतर, हो आपका स्वास्थ्य और बेहतर, इन शुभकामनाओं के साथ इस कड़ी में लेते हैं आपसे इजाजत। फिर अगली कड़ी में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओम शांति, नमस्कार।